नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए क्लेवर, नए रंग, नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ। अब आपसे रोज मुलाकात होगी इसी समय पर, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो खेल की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। भारत की सीनियर पुरुष टीम ने CASA रग्बी सेवन्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। महिला टीम चौथे स्थान पर रही। हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। सलीम टेटे को सौंपी टीम की कमान। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 प्रतियोगिता कल से शुरू। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 11वें ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है इस समय हैदराबाद की टीम, और वो चाहेगी कि और करीब पहुंचा जाए पहले और दूसरे स्थान के, जबकि चेन्नई की नज़र है कि 5वें से छलांग लगाई जाए और चौथे स्थान पे अपना कब्जा बनाया जाए। इससे पहले लीग में कल 2 मुकाबले खेले गए, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया, जबकि दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया।
आईपीएल के 62वें मुकाबले में कल दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53, कप्तान रियान पराग ने ताबड़तोड़ 26 गेंदों में 51 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 219 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 46 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क को 4, वहीं लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी को 2-2 सफलताएं हाथ लगी। जवाब में दिल्ली की टीम की शुरुआत शानदार रही। पहले विकेट के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने 105 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने 51, वहीं केएल राहुल ने 56 रनों का योगदान दिया। अंत में कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने 5 गेंदों में 18 रन बनाकर टीम को जीतलाई। दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं कल खेले गए एक और मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है और पंजाब के लिए ये लगातार 6वीं हार है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
पंजाब की 6ठी हार और रोज बढ़ता उसकी जीत का इंतजार। प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ आईपीएल का सबसे रोमांचक हिस्सा होती है, अगर कहा जाए तो 11वें खिलाड़ी की तरह काम करती है। प्लेऑफ पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय विशेष मौजूद हैं हमारे सहयोगी। विशेष, प्लेऑफ जो है आईपीएल को रोमांचक बनाने में सबसे बड़ा किरदार निभाता है। इस 4 सीटर गाड़ी की पहली सीट पे कल आरसीबी बैठ गई है। कौन से 3 यात्री हैं जो सबसे आसानी से इस गाड़ी में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं अभी आपको?
शक्ति, जैसा आपने बताया कि आरसीबी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, गुजरात टाइटंस अभी दूसरे स्थान पर मौजूद है और वो 16 अंकों को प्राप्त कर चुकी है। अगर वो एक जीत सुनिश्चित करते हैं तो उनकी जगह लगभग तय हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। वहीं अगर हम एसआरएच की बात करें तो आज उनका मुकाबला चल रहा है और वो 14 अंक पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। एक जीत उनको सुनिश्चित करनी ही होगी, और अगर वो दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करते हैं तो उससे उनको दूसरे नतीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, और कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि अपने प्लेऑफ के सफर के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर होना पड़े, लेकिन हमने देखा है कि एक ट्रेंड है आईपीएल का विशेष, कि कुछ टीमें धीमे दरवाजे से आती हैं, चुपके से आती हैं और प्लेऑफ में जगह पाती हैं। कुछ टीमें अभी भी ऐसी दौड़ में हैं, 6ठे 7वें स्थान पर हैं, लेकिन संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। ऐसी कौन टीमें हैं जिनके लिए अभी भी संभावनाएं, विकल्प और समीकरण प्लेऑफ का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, अगर समीकरण की बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं अगर दिल्ली भी देखी जाए तो उनके पास भी एक पॉइंट का जो एडवांटेज है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। केकेआर भी रेस में बनी हुई है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स वो अपनी स्थिति पूर्णतः मजबूत कर सकते हैं अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतकर। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को भी एक एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो हमें इस आईपीएल में देखने को मिल सकता है कि टीमें 14 या 15 अंकों के साथ क्वालिफाई करेंगी। इस स्थिति में पंजाब के लिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है जो वो अंतिम मुकाबला खेलने वाले हैं।
जी बिल्कुल, तो अंतिम मुकाबलों तक ये लाइन चलेगी और शायद आखिरी दिन जाके कहीं तय हो पाए कि हमारे चार प्लेऑफ के खिलाड़ी कौन होंगे। और अब आईपीएल से चलते हैं टेनिस के कोर्ट की तरफ, जहां पे कुछ और इतिहास बनते और बिगड़ते नजर आए। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे 1976 में एंड्रियानो पनाटा के बाद इस खिताब को जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए।
सिनर ने फाइनल मुकाबले में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार छठा एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीता। इस सत्र में सिनर ने पेरिस मास्टर्स, इंडियन वेल्स मास्टर्स, मियामी ओपन, मोंटे कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन और इटालियन ओपन जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतकर इतिहास रचा है। 1 घंटे 44 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके नोवाक जोकोविच के बाद सिनर एटीपी इतिहास में करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर ने अब सभी एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिए हैं। जोकोविच ने 2018 में सिनसिनाटी जीतने के बाद ये कामयाबी हासिल की थी। मैदान में दर्शकों की भारी समर्थन के बीच सिनर ने धीमी शुरुआत से वापसी करते हुए अपना 10वां मास्टर्स 1000 खिताब और रोम में पहला टाइटल जीता। शुरुआत में कैस्पर रूड ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन लगातार सटीक शॉट्स लगाकर सिनर ने फाइनल मैच का रुख पलटा और ये यादगार जीत हासिल की। इससे पहले एलेना स्वेतोली ने महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीता था। एलिना ने फाइनल मुकाबले में कोको गफ को 6-4, 6-7 और 6-2 से हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
तो जब भी कभी हम टेनिस खिलाड़ियों का जिक्र करते थे तो रोजर फेडर और राफेल नडाल की वो बैटल्स याद आती थी, और आज ये युवा खिलाड़ी इटली से निकल करके उसी तहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। और अब टेनिस के बाद इसी गेंद को ले चलते हैं रग्बी के मैदान की तरफ, जहां उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित CASA रग्बी सेवन्स में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीनियर महिला टीम चौथे स्थान पर रही। पुरुष टीम ने लगातार अपने शुरुआत के चारों मैच जीते, जहां भारत ने उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। हालांकि फाइनल मुकाबले में उसे श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा, जबकि सीनियर महिला टीम ने पहले दिन उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना किया था। इसके बाद किर्गिस्तान और मंगोलिया के खिलाफ शानदार जीत के साथ इस टीम ने वापसी की और चौथे स्थान के साथ इस प्रतियोगिता से लौट रही है भारतीय महिला रग्बी टीम। और महिलाओं की बात चली है तो अब बात करते हैं महिला हॉकी की, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली श्रृंखला में 4 मुकाबले होंगे, जो कि 26 मई से खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 26 मई, दूसरा 27 को होना है, तीसरा मैच 29 मई को, जबकि अंतिम मुकाबला 30 मई को खेला जाना है। और इस सीरीज के सभी मुकाबले जो हैं वो पर्थ हॉकी स्टेडियम में होने हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अगर देखा जाए सलीम टेटे को टीम का कप्तान बनाया गया है, यहाँ पे अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। लेकिन यहाँ से महिला टीम की जो सबसे अधिक नजर होगी वो एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने पर होगी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन कल से शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं भारत को इस प्रतियोगिता में अपने किन किन बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस शानदार सुपर 500 टूर्नामेंट में एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में भारत और फ्रांस के बीच एक नई जंग का इंतजार है और भारतीय शटलर्स अपनी हालिया थॉमस कप सेमीफाइनल हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस महीने की शुरुआत में डेनमार्क के हॉर्सेंस में थॉमस कप सेमीफाइनल में फ्रांस से 0-3 से हारने के बाद भारत ने कांस्य पदक जीता था। भारत तीनों सिंगल्स मैच हार गया था। भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य इंडोनेशिया के मोह जकी उबैदिल्ला के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं तरुण मन्नेपल्ली फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से भिड़ेंगे। किरण जॉर्ज सातवीं वरीयता प्राप्त एलेक्स लानियार का सामना करेंगे और एचएस प्रणॉय का मुकाबला क्रिस्टो पोपोव से होगा। एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना होगा। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन का सातवीं वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव से सामना होगा। भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ियों में तन्वी शर्मा का मुकाबला थाईलैंड की पिचामोन ओपरनेपुत से होगा। उन्नति हुड्डा का सामना चीन की हान कियानशी से होगा। मालविका बंसोड जर्मनी की यवोन ली से भिड़ेंगी और अनमोल खरब का मुकाबला डेनमार्क की लाइन होजार्क कर्जसफेल्ड से होगा। रक्षिता श्री संतोष राम और ईशारानी बरुआ भी चुनौती पेश करेंगी। देविका सिहाग क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। वहीं महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम तथा रुता पर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा की जोड़ी भारत की ओर से चुनौती रखेगी, जबकि मिक्स्ड डबल्स में आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश तथा रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे भारतीय दल का हिस्सा हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
तो कहा जा सकता है कि उबर कप के ब्रॉन्ज मेडल की चमक और धारदार करने के लिए और शानदार और चमकदार करने का एक मौका भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए इंतजार कर रहा है, और थोड़ी सी कसर जो गोल्ड ना आ पाने की थाईलैंड ओपन में थी वो भी शायद यहां पर कुआलालंपुर में मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं भारतीय युवा मुक्केबाजों के प्रदर्शन की, जो उन्होंने ताशकंद में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहां भारतीय मुक्केबाजों की युवा पीढ़ी की चमक बॉक्सिंग रिंग से निकलकर विश्व पटल पर चमकती हुई नजर आई। भारत ने कुल 44 पदक जीते इस दौरान, और इन्हीं पदकों में से एक स्वर्ण पदक विजेता हंसिका हैं। हंसिका इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और जो हमें बताएंगी कि इस प्रतियोगिता के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। हंसिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की तरफ से, और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का देश का मान बढ़ाया। हंसिका, देश के बाहर जाना और इतना शानदार प्रदर्शन करना, आप सभी श्रोताओं को बताइए कि ये पूरी प्रतियोगिता का अनुभव आपके लिए किस तरह का रहा?
मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड मैंने पहली बार खेला तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दूसरी कंट्री में जाना, एरोप्लेन में बैठना, और ये टोटली एकदम नया एक्सपीरियंस है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, एक नया एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हंसिका, बहुत लोगों को आपसे उम्मीद थी घर परिवार से लेकर की आपकी अकेडमी तक, तो स्वाभाविक है बहुत दबाव रहा होगा, तो आपने आखिर इस दबाव को किस प्रकार हैंडल किया है पूरी प्रतियोगिता में?
मेरे जो कोचेस थे वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे इस चीज के लिए कि मतलब कि डायलॉग था एक कि अब तुम फौजी बेटी हारना, मतलब मेरे पापा ऐसी आर्मी में है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मेरे को देते रहते थे इस वजह से।
जी बिल्कुल,
डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ मैं मैच में, थोड़ी बहुत नर्वसनेस हुई थी जो कि रिंग में उतरने के बाद मेरी खत्म हो गई थी बेसिकली।
जी बिल्कुल, आपके रिंग में उतरने के बाद आपके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों में वो नर्वसनेस नजर आई हमें। अब ये भी बताइए कि इस उपलब्धि के बाद अब आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है हंसिका?
अब मुझे आगे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जूनियर में मेरे को कोशिश करनी है कि मैं उसमें भी नेशनल में गोल्ड लाऊं, एशियन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड लेके आऊं।
जी बिल्कुल, बहुत सारी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। हंसिका के पिता प्रमोद अत्री भी हमसे जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, हंसिका ने हमें बताया कि वो फौजी की बेटी हैं और हर तरह का दबाव जो है वो झेल सकती हैं, तो आप हमको ये बताइए कि हंसिका इस उपलब्धि से आप कितना खुश हैं और भविष्य में इस युवा बॉक्सर को आप किस मंच पे देखना चाहते हैं?
सुपर प्राउड है, और पूरे क्षेत्र में, पूरे गाँव में और जो आसपास डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हम अपने घर आए थे,
जी
इतना अच्छा जो है लोगों ने वेलकम किया है यहाँ पे कि हम आपको कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। पूरे मतलब कई हजार लोगों की जो भीड़ वहाँ से तप्पल पहुँची लेने के लिए, ढोल डीजे बाजे लेकर के, बैनर लेकर के, तो मतलब इन चीज के लिए कुछ बोलना तो मेरे लिए तो शब्द भी जो है कम है। पूरे क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार है, हैं सर, इतना प्राउड फील हो रहा है कि पूछो मत, है नहीं सर। हमें ये उम्मीद है कि सर ये आगे ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे और आगे चल के ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेके आए सर।
जी बिल्कुल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल की उम्मीद है, और हम भी यही शुभकामनाएं देंगे कि ये खिलाड़ी भविष्य में ऐसे ही नए कीर्तिमान स्थापित करे और देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आए बॉक्सिंग में। और हंसिका के कोच से भी हमने बात की, जिन्होंने बताया जितेंद्र टोकस ने कि किस तरह से ये खिलाड़ी जो है अपने आयु वर्ग से बड़े खिलाड़ियों के साथ लड़ती रही है, जीतती रही है, तो देश को एक मजबूत खिलाड़ी मिलने जा रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।